पयणि पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समपियो सुपदंतस। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब अपनी ये सातवीं पुस्तक चल रही है, द्वितीय खंड खुद्दा बंध की बात चल रही है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 28 पर आए हुए हैं। अभी हमारा जो विषय चलेगा कि ये जो बंधक जीव है उनके 11 अनुयोग द्वारों के आधार से वर्णन चलेगा। उसमें पहले में पहले एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, तो उसमें अभी एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व बताएंगे, फिर एक जीव की अपेक्षा काल बताएंगे और एक जीव की अपेक्षा अंतर बताएंगे। पहले तीन अनुयोग द्वार तो ये है, बाद में वो नाना जीवों की अपेक्षा जो कुछ बातें हमने कल देखी थी, 11 के नाम भी देखे थे। अब यहाँ अपना विषय शुरू हो जाता है 28 पृष्ठ पर, सूत्र नंबर 3। एय जीवेण सामित्तम, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व की प्ररूपणा की जाती है। अब स्वामित्व भी अलग अलग गतियों में वो बताएंगे। अभी मार्गणा की अपेक्षा कह रही, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, अभी उसमें 14 मार्गणा आदि बातें लगाएंगे, तो गति मार्गणा की अपेक्षा, फिर कौन कौन सी गति होती है उसमें कौन कौन जीव स्वामी है उसकी बात चलेगी। अभी जैसा उद्देश्य, ये हमने कल सूत्र पढ़ा था, दोबारा पढ़े, जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार निर्देश किया जाता है। इस न्याय का अनुसरण करने के लिए एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का वर्णन करेंगे, ऐसा प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि एक जीव की अपेक्षा हमें स्वामित्व देखना है, वो एक पहला ही अनुयोग द्वार है। अब 4 नंबर का सूत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। गदी याणु आदेण निरय गदीये नेरयो नाम कदम भवती। अभी नर गति की बात करेंगे, नर गति मार्गणा की अपेक्षा, फिर उसमें 4 गतियों की अलग अलग बात करेंगे। तो गति मार्गणानुसार नरक गति में, इस पुस्तक में बहुत सारा अस्पष्ट प्रिंटिंग हुआ है, अब जहाँ जो शब्द रह गया या अक्षर रह गया उसको ठीक करना। गति मार्गणानुसार नरक गति में नारकी जीव किस कारण से होते हैं, किस कारण से है, प्रश्न चिन्ह चाहिए यहाँ। उसका उस पर शंका पूछते हैं, प्रश्नार्थक सूत्र का भी उत्तर नहीं आया है, उसी के पहले शंका है, प्रश्न पर ही शंका पूछ रहे। यह प्रश्नात्मक सूत्र किस आधार से रचा गया है, तो उसका समाधान, यह प्रश्नात्मक सूत्र नय समूह के आधार से रचा गया है। नारकी जीव किस गति में है, कौन से कारण से है, ऐसा जो पूछा है, तो अलग अलग नयों के द्वारा उसका उत्तर देंगे। इसलिए कहते हैं इस प्रश्न का आधार नयों का समूह है, कोई एक नय की बात नहीं है, तो नय समूह के आधार से रचा गया है। यदि एक ही नय होता तो कोई संदेह भी उत्पन्न नहीं होता, एक ही कथन कर देते, परंतु नय अनेक है इसलिए संदेह उत्पन्न होता है कि किस नय के विषय का आश्रय लेकर स्थित नारकी जीव का यहाँ ग्रहण किया गया है। आगे वो बताएंगे अलग अलग नयों से नारकी किस किस को कहना, तो इसलिए वो पूछते हैं कि कौन से नय का आधार लेकर ये बात आप पूछ रहे हो। यहाँ पर नयों का अभिप्राय बतलाते हैं, वह इस प्रकार है। तत्वार सूत्र में हमने नय के नाम देखे है, याद है किसी को? हाँ, नयगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, समभिरूढ़, शब्द और एवं भूत, है ना, हो गए ना सब, ये रह गया कोई? हाँ, अभी एक एक ये जो नारकी जी होते इन नयों के आधार से अभी उसका एक एक वाक्य बना के बताएंगे हम। वह इस प्रकार है, वो अभी नीचे बताते हैं। किसी मनुष्य को तम जहां, वो पहले ऊपर की गाथा पढ़नी पड़ेगी ना, यह गाथा के अर्थ में एक आंकड़ा नहीं दिया है, वो देना चाहिए। जैसे आगे दो लिखे ना, अगले लाइन के बाद एक मैं पढ़ती हूँ वाक्य, पहले गाथा पढ़ेंगे। कंपिनरम दठूणय पावजन समागमं करे माणम नेगमनयेन भन्नै नेरयो एस पुरुषोक्ति। अभी थोड़ा थोड़ा प्राकृत का अर्थ आता है कि नहीं आता? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है ना। अरे थोड़ा तो क्या बात चल रही है, कौन सा विषय चल रहा है, इतनी तो बात है। देखो, कंपिनरम दट्टुन, किसी मनुष्य को देखकर, कैसे मनुष्य को? पावजन समागमम करे माणम, पापी जनों का समागम करते हुए मनुष्य को देखकर। नेगम नयन बन्नई, नेगम नय से यह कहा जाता है, नेरयो एस पुरुषोक्ति, यह पुरुष नारकी है। अभी नीचे उसका अर्थ किया, देखो। किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते हुए देखकर नैगम नय से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। वो पाप के कारण भविष्य में नरक में जाएगा, परंतु उसका अभी जैसी मति वैसी गति कहते ना, अब उसकी मति नारकी में जाने जैसी है, तो नरक गति योग्य उसके परिणाम हो रहे हैं, तो उसको अभी से नारकी कहें। देखो, दोनों प्रकार से बात आती है शास्त्र में, गति वैसी मति और मति वैसी गति। तो अभी मति जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति, जब नरक गति है तो वहां के अनुसार उसके मति यानी उसके जो कुछ आचरण होते हैं, उसके भाव होते हैं, गति अनुसार होते हैं। वैसे ही नरक में जाने योग्य जिसके परिणाम जैसे है, तो वो नरक गति का बंद करता है, तो नैगम नय से तो उसको अभी से नारकी कहेंगे। भविष्य नैगम ने, जब वह मनुष्य प्राणीवध करने का विचार कर सामग्री का संग्रह करता है, तब वह संग्रह नय से नारकी कहा जाता है। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि उसके ऊपर कुछ गाथा नहीं लिखी है। पहला संग्रह नय है, सॉरी नैगम नय है, और दूसरा संग्रह नय है, उसको बताने के लिए यह ये ब्रैकेट में बता दिया उन्होंने। अब व्यवहार नय की बात गाथा द्वारा पहले बताएंगे। व्यवहार सदुवयनम जय्या को दंड कंड गय हत्थो भमय मय मगंतो तैया सो हो इने रहियो। व्यवहार नय का वचन इस प्रकार है, जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष और बाण लिए मृगों की खोज में भटकता फिरता है, तब वह नारकी कहलाता है। प्राणियों को वध करने के लिए साधन लेकर अभी निकला है, तो उसको व्यवहार नय से कहेंगे यह नारकी है। अब रुजुसूत्र नय की बात करेंगे। उज्जुसुदस्सदुवयनम जय्याहिरठाई दूनठाणम मी आहणदिमय पाहो तैया सो हो इने रहियो। रुजुसूत्र नय का वचन इस प्रकार है, आखेट स्थान पर पापी मृगों पर आघात करता है, पापी मृगों पर नहीं, पापी यानी पापी मनुष्य। आखेट का अर्थ मालूम है? बनारसी दास के इसमें आएगा तो सप्तवचन में आखेट का शिकार। हाँ, तो शिकार के स्थान पर पापी यानी पापी मनुष्य मृगों पर आघात करता है। मृग यानी केवल हरिण नहीं समझना, मृग यानी पशु जो जंगल में चरते हैं, वनचर, उनको भी मृग कहते हैं, प्राणी। मृगों पर आघात करता है तब वह नारकी कहलाता है। देखो ये नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र आगे आगे वाला सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा है। एक्चुअली जब उस पर आघात करेगा तब रुजु सूत्र ने कहेगा कि ये अभी नारकी है, पहले तो केवल धनुष लेकर निकला था। अब आगे जो है वो शब्द संबंधी है, तो शब्द ने का वचन इस प्रकार है, सदनय सदु वयनम, वयनम चाहिए, वयन हुआ है, वयनम ऊपर आया था ना, वयनम वयनम, सदनय सदु वयनम जया पाणे हिमो इदो जंतु तैया सोने रहियो हिंसा कमेण संजुतो। शब्द ने का वचन इस प्रकार है, जब जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाए, जंतु यानी प्राणी, ये जीव जंतु यानी छोटे कीड़े मकोड़े उसकी बात नहीं है, अब ये मृगया यानी शिकार को निकला है, किसी प्राणी का वध करता है, तो जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाए, जब उसकी हत्या कर दी जाती है तभी वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाए। पहले तो आघात करने वाला कहा था, अभी वो प्राणी मर गया तब अभी इसको कहते हैं वो नारकी है। अब पांचवी गाथा, वयनम तु समभिरूढ़म नारयकम मस्स बंध गोजय्या तैया सोने रहियो नारयकम मेण संजुतो। समभिरूढ़ नय का वचन इस प्रकार है, जब मनुष्य नारक कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाए तभी वह नारकी कहा जाए। वो वध किया उसकी बात नहीं है, क्या उसने नरकायु आदि जो कोई नारक संबंधी जो कर्म है उसका बंध किया होगा तो उसको नारकी कहेंगे। पहले से और आगे बढ़े ना, ये पांचवी नंबर की बात हो गई, समभिरूढ़ नहीं, अब एवं भूत नहीं रह गया ना, यहां भी वो छह नंबर लिखा नहीं उन्होंने। ये दो नंबर का उन्होंने लिखा ही नहीं था, इसलिए आपको लगेगा ये छह ही नहीं क्यों बताया, ये दूसरा जो संग्रह नए है उन्होंने ब्रैकेट में बताया था, और ये छह ऐसे सात हो जाते हैं। देखो इसको पढ़ेंगे हम, छह का विषय पहले ऊपर पढ़ेंगे। छठी गाथा, निरय गयम संपत्तो जय्या अनुहवयिनारयम दुखम तैया सोने रहियो एवं भूदोणो भणदी। जब वही मनुष्य नरक गति को प्राप्त होकर नरक के दुख अनुभव करने लगता है तभी वह नारकी है। एवं भूत नय तो जो वर्तमान में जो उस रूप हो रहा है उसको नारकी कहे, नरक का दुख अनुभवने वाले नारकी जीव जो वहां विद्यमान है उसी को नारकी कहेगा। ये अलग अलग नयन से कथन है। देखो जब वही मनुष्य नरक गति को प्राप्त होकर नरक के दुख अनुभव करने लगता है तभी वह नारकी है, ऐसा एवं भूत नय कहता है। खाली नरक में गया है इसलिए नहीं, नरक में तो देव भी जाते हैं उपदेश के लिए, तो उनको नारकी नहीं कहा जाता, ख्याल है ना, नहीं समझा। हॉस्पिटल में जाने वाले सभी रोगी होते हैं ना, नहीं होते, कौन होते, डॉक्टर भी होते हैं। वैसे यहाँ नरक में जाकर वहाँ के जीवों को या कोई पूर्व भव संबंधी जीवों को उपदेश देने वाले असुर को या लड़ाने वाले भी होते हैं ना, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है स्वर्ग के, वो नीचे तीसरे नरक तक जाकर भी उपदेश देते हैं, और असुर कुमार भी वो देव जाति के हैं और वो तो नारकियों को लड़ाने के लिए भिड़ाने के लिए वो वहाँ जाते हैं, परंतु उनको नारकी नहीं कहते, उस क्षेत्र में गए इसलिए नारकी ऐसा नहीं है, ख्याल है ना। पहले तो ये नयों में क्या बात है, ये जो नारकी जैसे जिनके भाव है पूर्व भाव में ही उनको नारकी कह दिया है, और एवं वो जो लास्ट जो नए है वो वर्तमान में जो नरक में है, नरक के दुखों का अनुभव कर रहे हैं, उसको नारकी कहा है। इन समस्त नयों के विषयभूत नारकी समूह का विचार करके ही नारकी जीव किस प्रकार होता है, यह प्रश्न किया गया है। तो नारकी जीव किस प्रकार कर रहा है, तो ये उसका उस संबंधी भाव करने वाले को भी नारकी कह दिया जाता है। तो नारकी जीव किस प्रकार होता है, उसका उत्तर अलग अलग नयन से आता है। अथवा अब प्रश्न करने का दूसरा जो कोई हेतु है, अथवा कहते हैं नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से नारकी चार प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बंधक भी चार प्रकार के देखे थे, नाम बंधक, स्थापना बंधक, द्रव्य बंधक और भाव बंधक। अब नारकी पर भी ऐसा ही लगाएंगे चार निक्षेप। कौन कौन से हो गए? हाँ, नाम नारकी, स्थापना नारकी, द्रव्य नारकी और भाव नारकी। अब देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। तो ये नारकी चार प्रकार के होते हैं। नाम नारकी, नारकी शब्द को ही कहते हैं, नारकी यह नाम ही नाम नारकी है। वह यह है ऐसी ऐसा बुद्धि से विवक्षित नारकी का विवक्षित वस्तु के साथ एकत्व करके, क्या कहते हैं, विवक्षित वस्तु का विवक्षित वस्तु के साथ, यानी अभी हमको कोई, हमने लकड़ी के कोई चार ऐसे क्यूब्स रखे या कोई फिगर्स रखी, तो हमने कहा ये नारकी है, ये देव है, ये मनुष्य है, स्थापना की ना उसमें, तो उसको स्थापना नारकी कहेंगे। देखो फिर पढ़ते इस वाक्य को, बुद्धि से, ये अपने बुद्धि से ही समझना है उसमें, क्या कहना, विवक्षित नारकी का विवक्षित वस्तु के साथ एकत्व करके। हम कोई भी चीज सामने रखे, मान लेते कोई ऐसी प्लास्टिक की वस्तु रखी या कोई चौक रखा, रबर रखा, हम कहेंगे ये नारकी है, हमने इसमें नारकी बुद्धि के द्वारा कल्पना कर ली है, क्योंकि हमको कोई विशिष्ट बात समझानी है जो कुछ है। या चित्र में भी यह नारकी है कहते ना, नारकी का चित्र दोहरा के हम बच्चों को क्या समझेंगे, देखो ये नारकी है, ये देव है, ये मनुष्य है, ये तिरियंच है, तो चित्र में भी हमने स्थापना की ना उसकी। वैसे एकत्व करके सद्भाव और असद्भाव रूप से, यानी तदाकार या अतदाकार रूप से, उसको सद्भाव असद्भाव कहते हैं। स्थापना नारकी कहलाता है। वो स्थापना नारकी जरा एक इन्वर्टेड में डालना, क्योंकि स्थापित स्थापना ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है पढ़ते समय, है ना, उस रूप से स्थापित उसको क्या कहेंगे, स्थापना नारकी। अब द्रव्य नारकी की बात करेंगे। हमने हमेशा जो द्रव्य निक्षेप है उसके दो भेद देखे थे, आगम और नो आगम। आगम में उस संबंधी आगम को जानने वाले परंतु वर्तमान में अनुपयुक्त ऐसा जीव लिया था। अब नारकी संबंधी जो आगम है, सूत्र है, शास्त्र है अपना, उसको जानने वाले जीव परंतु वर्तमान में उसमें उनका उपयोग नहीं है, अन्यत्र है, मान लेते इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, आगम द्रव्य नारकी। बराबर। अब यहाँ बताते, देखिए उसी की डेफिनेशन कर रहे हैं। नारकी संबंधी प्रावृत का जानने वाला, प्रावृत यानी आगम, किंतु उसमें अनुपयुक्त जीव आगम द्रव्य नारकी है। हाँ, नारकी के प्रारूप को जाने, वर्तमान में उपयुक्त है ना उसमें, अभी उसकी बात नहीं है, वो भाव आगम में चला जाएगा। अब कहते हैं नो आगम की बात करेंगे। नो आगम के हमने तीन भेद देखे थे, ज्ञायक शरीर, भव्य कहो या भावी कहो, एक ही बात है, भव्य और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर यानी वो जानने वाले का शरीर लेना उसमें, भव्य में जो जीव भविष्य में जानने वाला है उसको लेना है, और इनके अलावा अन्य जो कोई चीज है वो तद व्यतिरिक्त में जीव को लिया, जीव के लेना। शरीर को लेना है वो ज्ञायक शरीर के तीन भेद करेंगे, भूत ज्ञायक शरीर, भविष्य ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर। हाँ, भव्य नो आगम में या भावी नो आगम में जीव को लेना, जो जीव भविष्य में जाने वाला है, और ज्ञायक शरीर में वर्तमान में जान रहा है, अनुपयुक्त है, परंतु उसके शरीर को लेना, पिछले भव के शरीर को भी, वर्तमान शरीर को भी और भविष्य के शरीर को भी लेना, उस जीव के, जानने वाले जीव के शरीर का, उसमें भूत भावी और वर्तमान ऐसे आ गए। अब देखो यहाँ तीसरी लाइन में, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से अनागम लिखा है, नो आगम जिसको हम कहते थे, हाँ ऊपर भी अनागम ही लिखा है, अनागम दौब नहीं रही हो, समझना उसको, नो आगम या अनागम एक ही बात है। अनागम द्रव्य नारकी, अनागम द्रव्य नारकी तीन प्रकार का है ना, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद व्यतिरिक्त। अब ज्ञायक शरीर और भव्य ज्ञात है, ज्ञात है ना, अभी हमें मालूम है, कर्म और नो कर्म के भेद से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य नारकी दो प्रकार का है, यह नो आगम लिखा है ना, जिसको अनागम लिखा है उसी को नो आगम लिखा है, एक ही बात है दोनों। तद व्यतिरिक्त के दो भेद हो जाएंगे, कौन से, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य नारकी और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य नारकी। हाँ अभी बता रहे, कर्म द्रव्य नो आगम द्रव्य नारकी में किसको लेना, तो देखो नरक गति नाम कर्म के साथ प्राप्त हुए द्रव्य कर्म द्रव्य समूह को कर्म नारकी कहते हैं, कर्म नारकी है ना, कर्म द्रव्य नारकी कहना है, कर्म द्रव्य नारकी किसको कहना, देखो जिसने नरक गति नाम कर्म बांधे ना, तो नरक गति नाम कर्म के साथ प्राप्त हुए कर्म द्रव्य समूह को, कर्मों को यहाँ कहा है द्रव्य नारके, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य नारकी किसको कहा, नरक गति नरकायु आदि कर्म समूह को, तद व्यतिरिक्त है ना, जो शरीर भी नहीं है, जो जीवन भी नहीं है, ऐसा क्या है, तो कर्म है, उसकी बात यहाँ बता रहे, तो कर्मों को भी नारकी कह दिया, द्रव्य नारकी कैसा, नो आगम द्रव्य नारकी, वो भी कैसा, तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त का भी कौन सा भेद, कर्म वाला, तो उसका पूरा नाम क्या होगा, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य नारकी। कर्म नारकी कहते हैं, यहाँ फुल स्टॉप चाहिए, दंड जिसको कहते हैं हिंदी में, कर्म नारकी कहते हैं, कर्म द्रव्य समूह को कर्म नारकी कहते हैं, पूरा उन्होंने लिखा नहीं, हाँ जो वो द्रव्य कर्म जो है वो कर्मों को ही द्रव्य नारकी कहा है, जीव को नहीं कहा, यहाँ तद व्यतिरिक्त है ना, इनके अलावा शरीर को भी कहा, जीव को भी कहा, जो भविष्य में जानने वाले नो आगम की बात है ना, और ये तीसरी इनके अलावा क्या है, तो कर्मों को भी नारकी कह दिया, नरक संबंधी जो कर्म समूह है उसको भी नारकी कह दिया, उन कर्मों को नारकी कह दिया। अब कहते पाश, पाश मालूम है क्या होता है, नहीं पाश नाम सुना है, पंछियों को पकड़ते हैं ना, तो वो पारदी जो होते हैं वो ऐसा पाश फेंकते हैं, जाल उसमें अटकते हैं, उसको पाश कहते हैं, पंजर, पंजर यानी पिंजर, वो तो जंगली जानवर पकड़ने के लिए ऐसा कुछ यंत्र वगैरह ट्रैप वहां रखते हैं, और यंत्र में भी वही समझना, आदि नो कर्म द्रव्य जो नारक भाव की उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं वे नो कर्म द्रव्य नारकी है, उन चीजों को कहा हो, हिंसा में या वध में या इवन पकड़ने में, प्राणियों को पकड़ने में जकड़ने में जो कारणभूत ऐसे जो वो सामग्री है वो जीव के उन भावों में निमित्त है, तो उन सामग्री को अन्य चीजों को ये नौकर्म है, वो शरीर मनवाने वाला नौकर्म नहीं लेना, यहाँ नौकर्म है कर्म के अलावा अन्य चीजें वो नौकर्म लेना, तो ये जो नौकर्म द्रव्य है जो नारक भाव की उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं वे नौ कर्म द्रव्य नारकी है। ये द्रव्य नारकी की बात हो गई, अब भाव नारकी की बात करेंगे। भाव नारकी में भी दो बातें होगी, आगम भाव नारकी और नो आगम भाव नारकी। आगम में किसको लेंगे? नारकी संबंधी प्रावृत को जानने वाले और वर्तमान में उसी में उपयुक्त, वर्तमान में जो है कंडीशन उसको भाव में लेंगे, भाव निक्षेप में। हाँ, जैसे एवं भूत नए में हमने वर्तमान उस रूप जो परिणमन रहा है उसी को कहा था, वैसे यहां भाव निक्षेप में भी लेना। देखो, नारकियों संबंधी प्रावृत का जानकार और उसमें उपयोग रखने वाला जीव आगम भाव नारकी है। अभी नो आगम भाव नारकी किसको कहना? तो नरक गति नाम प्रकृति के उदय से नरकावस्था को प्राप्त हुआ जीव नो आगम भाव नारकी है। आगम भाव नारकी किसको कहना? आगम ये जो नारकी संबंधी प्रावृत को जानने वाला जीव जो उसी में वर्तमान में उपयुक्त है उसको आगम भाव नारकी। और नो आगम भाव नारकी कौन है? नरक गति के नाम प्रकृति के उदय से जो नरक में गया है, नरक अवस्था को प्राप्त हुआ है, ऐसा जीव नो आगम भाव नारकी है। एंड जब जब हम नारकी जीव कहाँ रहते हैं वगैरह जो बात करते हैं वो इनकी करते हैं, नो आगम भाव नारकी के। नहीं तो हम नारकी संबंधी शास्त्र जानेंगे और उसमें उपयोग है तो हम भी भाव या आगम भाव नारकी हो गए। इस नारकी समूह का विचार करके नारकी जीव किस प्रकार होता है यह प्रश्न किया गया है। हाँ ना, देखो भाव किसको कहना? जो वर्तमान में उस रूप परिणमित है वो। आगम में तो शास्त्र का जानकार को लेना और नो आगम में तो वो जानकार नहीं है उसको लेना है, परंतु वर्तमान में जो स्वयं नरक गति नाम कर्म के उदय में वो नरक अवस्था को प्राप्त हुआ है ऐसे जीव को लेना वहां। जब हम संख्या पूछते ना नारकी जीव कितने तो असंख्यात है, तो हम इसको रिफर करते नो आगम भाव नारकियों को। अथवा अब और ये प्रश्न का दूसरा भी कोई, पहले तो हमने सात नयों के द्वारा देखा, फिर नाम स्थापना द्रव्य भाव की अपेक्षा से देखे, अथवा कहते हैं अब पांच भावों में से कौन से भाव से नारकी होते हैं ऐसा पूछेंगे। देखो, अथवा क्या नारकी औदयिक भाव से होता है, क्या औषमिक भाव से, क्या क्षायिक भाव से, क्या क्षायोषमिक भाव से, क्या पारिणामिक, चाहिए परिणामिक हुए ना, क्या पारिणामिक भाव से होता है, ऐसा बुद्धि से विचार कर नारकी जीव किस प्रकार होता है यह पूछा गया है। ये प्रश्न का ही अभी डिसेक्शन चल रहा है कि प्रश्न क्यों पूछा है, किस एंगल से पूछा है, तो या नयों की अपेक्षा पूछा है, या निक्षेप यानी नाम स्थापना द्रव्य भाव की अपेक्षा पूछा है, या कौन से भाव के कारण नारकी होता है, ऐसे प्रश्न पूछने के अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रहे, अलग अलग उसके बिंदु बता रहे। तो प्रश्न में ही ऐसा कंफ्यूजन है, संदेह है, इस संदेह को दूर करने के लिए, देखा ना, इस संदेह को दूर करने के लिए आचार्य अगला सूत्र कहते हैं। नयों की अपेक्षा है कि निक्षेपों की अपेक्षा है कि पांच भावों की अपेक्षा क्या है, तो इसलिए अगला सूत्र स्वयं आचार्य बता देते हैं, तो ये अपना संदेह दूर हो जाएगा। पांचवें सूत्र में कहते हैं, निरय गति नामाय उदयेन, नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। नारकी के प्रश्न क्या पूछा था, देखो चौथे नंबर का सूत्र में, ये हमने 28 पृष्ठ पर देखा था, नरक गति में नारकी जीव किस कारण से है। गति मार्गणा के अनुसार नरक गति में नारकी जीव किस कारण से है, तो उसका उत्तर क्या आया? नरक गति नाम कर्म प्रकृति के उदय से जीव नारकी है। बराबर, अभी हर गति में यही सारा वो पहले प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, परंतु ये पूरे ही समझ लेना कि ये संदेह नहीं रखना है। नरक गति में क्यों है जीव, वहां क्यों गया, ये भगवान ने डाला उसको वहां, ये अन्य मति समझते हैं ना। कर्म करे हम, है ना, और फल दे भगवान। कर्म भी नहीं डालता नरक गति ना, ये तो निमित्त की भाषा भी यहाँ चलेगी। नाम कर्म के उदय से, गति नाम कर्म के उदय से जीव विशिष्ट गति में, विवक्षित गति में जाएगा तो नारकी होता है। एवं भूत नय के विषय रूप, एवं भूत नय, नय कहा, अभी निक्षेप की बात नहीं है। जो हमने भाव निक्षेप में देखा था, नो आगम भाव निक्षेप में, निक्षेप तो वस्तु में रखते हैं और नय तो जानने की पर्याय, अभी किस एंगल से देखते हैं अभी हम। एवं भूत नय, एवं भूत का कार्य क्या है, वर्तमान में जिस रूप परिणमित हो रहा है उस रूप उसको कहना। जैसे राजा है परंतु अभी वर्तमान में पूजा कर रहा है तो उसको हम पुजारी कहेंगे, आराधक कहेंगे, जो कुछ है, क्योंकि वर्तमान में उस पर्याय रूप से परिणत हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं एवं भूत नय के विषय रूप, यहाँ औदारिक लिखा है परंतु औदयिक चाहिए। देखो ऊपर पहली लाइन में, एवं बुध नय विषयेण ओदयिनी, इसी के लिए औदयिक के लिए ओदयिन ऐसा भाव ये आया था। देखो 30 पृष्ठ पर नीचे से 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन में, जिसका हमने नीचे अर्थ देखा था क्या नारकी औदयिक भाव से होता है, तो औदयिक शब्द के लिए वहां कौन सा शब्द आया था, अधवा नेरयो नाम किम ओदयेण भावेण, औदयिक भाव के लिए ओदयेण कहा ना, वैसे यहाँ ओदयिनी यानी औदयिक, तो यह औदारिक निकाल कर औदयिक करना उसको। देखो क्या कहते हैं, एवं भूत नय के विषय भूत औदयिक नो आगम भाव निक्षेप की अपेक्षा। देखो क्या कहते हैं, अभी अभी हमने जो नय और निक्षेप देखे ना, नय का नाम क्या है, वर्तमान पर्याय को जाने वाले नय का नाम है एवं भूत नय। उसके विषय का नाम क्या है, एवं भूत नय किसको जानता है, अभी यहां नारकी की बात चल रही है तो नो आगम भाव नारकी, वो क्यों है पांच भावों में से। उन्होंने देखो नारकी कैसे होते उसके लिए या तो नय की अपेक्षा से या निक्षेप की अपेक्षा से या पांच भावों की अपेक्षा से, अभी यहां तीनों ही लगाए। वर्तमान में जो नारकी है उसकी बात चलेगी, तो वर्तमान में नारकी उसको कौन सा नय जान रहा है, एवं भूत नय। निक्षेप की अपेक्षा कौन सा उसमें निक्षेप चलेगा, नो आगम भाव निक्षेप, यानी नो आगम भाव नारकी को। अब ये पांच भावों में कौन से भाव के कारण वो नारकी है, औदयिक भाव के कारण। तो ये तीन देखो फिर से पढ़ेंगे इसको, एवं भूत नय के विषय रूप, ये नय का नाम है एवं भूत। अब विषय में लगेगा निक्षेप, निक्षेप विषय रूप होता है और नय ज्ञान रूप होता है ना। तो नय की अपेक्षा कौन सा नय है सात नयों में से, एवं भूत नय। अब निक्षेप हमने इतने सारे देखे ना, नाम सापना द्रव्य भाव, उसमें भी भाव में से नो आगम भाव निक्षेप लगाया था, तो ये नो आगम भाव निक्षेप है। और उसके पहले ये पांच भाव की अपेक्षा कौन सा भाव है, यहाँ औदयिक भाव। तो नो एवं भूत नय के विषय रूप औदयिक नो आगम भाव निक्षेप की अपेक्षा नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। ये सब आए ना, नय भी आया, निक्षेप भी आया, सब पांच भाव भी आ गए, और कौन से प्रकृति के उदय में है, औदयिक कहे तो दिया, परंतु औदयिक तो कितने ही कर्मों का उदय है, उसमें से कौन से कर्म प्रकृति का उदय लेना। तो नरक गति नाम कर्म प्रकृति के उदय से जीव नारकी होते हैं। ख्याल आया, इसमें कोई शंका है, औदयिक भाव है ना, नरक गति नाम कर्म है, नारकी क्यों होते हैं, तो नरक में क्यों जाता है जीव, नारकी क्यों है, नरक गति नाम कर्म का उदय है।
आपका प्रश्न है कि यहाँ औदयिक भाव को क्यों लिया, ऐसा है हमने औदयिक भाव देखे थे ना 21 प्रकार के, उसमें गति औदयिक भाव है ना, तो यहाँ नरक गति का उदय है, उदय होगा नरक गति का और जीव जाएगा स्वर्ग में, ऐसा होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, स्वामी ख्याल में गई ना, इसलिए उस औदयिक भाव को लिए।
देखो ये प्रश्न यहाँ पूछा था 30 पृष्ठ पर, पहले नए संबंधी पूछा था इस 7 नए में से, फिर निक्षेप की बात बताई थी, फिर अथवा लिखकर ये 5वें सूत्र के ऊपर जो पैराग्राफ है, अथवा क्या नारकीय औदयिक भाव से होता है? अभी हम औदयिक भाव को अलग रखेंगे, क्या औपशमिक भाव से होता है? औपशमिक भाव कौन कौन से है? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व के कारण नारकीय होता है? नहीं होता। औपशमिक चारित्र के कारण तो होता होगा? नहीं होता, तो औपशमिक को हटा दिया। क्षायिक भाव से? नहीं होता। क्षौपशमिक भाव से? उसके कारण नारकीय नहीं होता है। क्षौपशमिक भाव जो ज्ञान दर्शन वगैरह है, जो दान लाभ भोग, उसका जो क्षोभशम आदि जो चल रहा है, उसके कारण कोई नारकी नहीं होता है, क्योंकि क्षोभशम भाव तो सभी गतियों में चल रहा है भी ना। क्षोभशम भाव से कोई नरक में नहीं जा रहा है, पारिणामिक भाव से तो जाता होगा ना? नहीं जाता। तो कौन सा रह गया? औदयिक भाव, इसलिए उसको औदयिक लिया। अभी औदयिक तो लिया, तो औदयिक के तो 21 प्रकार है, तो कषाय औदयिक भाव है, तो कषाय के कारण ऐसा नहीं, परंतु वो गति नाम कर्म का उदय है ना वहां पर, वो भी उदय की अपेक्षा लिया है, बंध की अपेक्षा नहीं लिया है। बंध की अपेक्षा वो नैगम नय वालों ने कहा था, या जो कोई नैगम भी नहीं, अंतिम वाला, वो समबिरूढ़ वाला जो बंध कर रहा है। तो यहाँ नारकी अभी वर्तमान में दुख उपभोग रहा है, तो उसके कौन से कर्म का उदय चल रहा है? हाँ, तो नरक गति नाम कर्म का उदय चल रहा है वहां। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये समझ में आए? इसमें कोई भी पूछना है तो पूछ लो। यानी यहाँ नए की, निक्षेप की और वो औदयिक भाव, यानी 5 भाव में से भाव की चर्चा हो गई। यानी ऐसे ही अभी आगे चलेगा, यह नारकी जो कहेंगे अभी हम, तो 9 आगम भाव नारकियों की बात चलेगी, और उसमें औदयिक भाव जो विशिष्ट गति नाम कर्म नारकी में, तो नरक गति नाम कर्म का, तिर्यंच में तिर्यंच गति नाम कर्म कहेंगे, मनुष्य में मनुष्य गति नाम कर्म कहेंगे, और फिर एवं बुद्ध में फिर जोड़ लेंगे उसके साथ साथ, बढ़ेंगे आगे अभी। हाँ, ये सारा जो अभी इतना समझाया है, आगे तो इतना समझ लो ऐसा कह देंगे। क्योंकि हर बार वो 7 नयों की, निक्षेपों की चर्चा नहीं होगी। अच्छा है। अब 6 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। तिरिक्ख गदिये तिरिक्खो नाम कदम भवति, तिर्यंच गति में जीव तिर्यंच किस कारण से होता है? यहाँ भी नए, निक्षेप और औदयिकादि, औदायिक हुआ है, औदयिकादि 5 प्रकार के भावों के आश्रय से, कहा ना, नए का भी आश्रय, निक्षेप का भी आश्रय और 5 भावों का आश्रय, आश्रय से पूर्वोक्त विधि से, जैसे पूर्वोक्त विधि सारी बताई वैसे उस विधि से संदेह की उत्पत्ति का प्ररूपण करना चाहिए। संदेह क्यों हो सकता है? तो ऐसे 7 नए है, ऐसे 4 निक्षेप है और ऐसे 5 भाव है, उसमें से किसको समझना, ऐसे संदेह हो सकता है, तो फिर उसको दूर करके कहेंगे वो एवं भूत के विषय भूत वगैरह वगैरह, जो अभी हमने ऊपर बताया ना, तिर्यंच गति में भी ऐसा ही कहेंगे। क्या कहेंगे? एवं भूत नए का नाम लिया, उसका विषय अभी निक्षेप कहेंगे, उसके विषय रूप अभी भाव कौन सा है? औदयिक भाव, और उसमें 9 आगम भाव निक्षेप की अपेक्षा। आगे क्या कहेंगे? तिर्यंच गति, हाँ, तिर्यंच गति नाम प्रकृति के उदय से जीव तिर्यंच होता है, तो ये कहते हैं ऐसा समझना चाहिए, प्ररूपण करना चाहिए। तो अभी हम समझ लेते हैं या समझ सकते हैं ऐसा समझकर आचार्य अगला सूत्र कहेंगे। तिरिक्ख गदी नामाए उदयेण, तिर्यंच गति नाम प्रकृति के उदय से जीव तिर्यंच होता है, क्योंकि तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत। क्या कहते हैं? तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय है, उस उदय से उत्पन्न हुई पर्याय, पर्याय तो जीव में उत्पन्न हुई, उस पर्याय रूप से परिणत जीव, गति औदयिक भाव जिसको कहते हैं। गति नाम कर्म तो कर्म में है, वहाँ तो वो निमित्त रूप से लेना, जीव स्वयं अपनी योग्यता से तिर्यंच के योग्य वहाँ भाव होते हैं, उसको उस रूप पर्याय से परिणत होता है। उस जीव के तिर्यंच संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है, तिर्यंच नाम पाया जाता है उसको, क्योंकि उसका व्यवहार उसका आचरण भी वैसा है और उसका ज्ञान भी वैसा है, तिर्यंच संबंधी जो कुछ होगा वैसा। अब आठवां सूत्र, नहीं ये तो किस परिणाम से तिर्यंच गति बांधी उसकी बात नहीं है, अब उस पर्याय से जो एक्चुअल अभी तिर्यंच गति में है, जैसे अभी कोई कुत्ता है तो उसके कैसे भाव है, तो मुंह से वो खाता है, ऐसे मनुष्य कैसे अनाज पका के खाएगा, घर बांध के रहेगा, कुटुंब में रहेगा, अभी तिर्यंच के भाव कैसे उस योग्य है, जैसे मनुष्य है तो कपड़े पहनेगा या कुछ ऐसे उसकी व्यवस्था अलग है ना, भोजन बनाकर खाना है, और तिर्यंचों के भाव कैसे है, पशु पक्षियों के कैसे, कीड़े मकोड़े के कैसे, जिस गति में वैसे उस पर्याय से परिणत जीव की बात है। नाम कर्म के उदय में और जीव में वो निमित्त है उदय, और जीव में होता है उदयिक भाव, यानी तिर्यंच जैसा उसका गति उदयिक भाव है ना। नहीं विधि में, ये विधि जो कहे ना, विधि के संदेह की उत्पत्ति, विधि यानी वो सात नए होते हैं उसमें कौन सा नए, ये उसको विधि कहा। यहाँ देखो इस वाक्य में फिर पढ़ती हूँ,
कारण होता है वो कारण की अपेक्षा कर रहे हैं, यहाँ वर्तमान में वो तिर्यंच बना
है, वर्तमान में उसके उस पर्याय से परिणत जीव, वर्तमान में जो तिर्यंच है उस जीव के जो भाव है, वो भाव की अपेक्षा उस जीव को हम तिर्यंच कह रहे हैं। हाँ वो एवं भूत नए और भाव निक्षेप ही लेना, नो आगम भाव निक्षेप। हाँ वो उपादान से होता है, उसमें निमित्त कौन है, तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय। अभी हम मनुष्य है तो मनुष्य जैसे हमारे आचार विचार सारे हैं, क्यों है, हमारे अपने कारण, उसमें निमित्त कौन सा है। अभी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, उदय हमारा मनुष्य गति नाम कर्म का है, कब से कब तक रहेगा, बीच में नारकी का उदय होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो मनुष्य बहुत चल रहा है तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चलता रहेगा अंत तक।
अरविंद भाई आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ सातवें सूत्र के बाद जो अगला सेंटेंस है, क्योंकि तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत जीव, या भी इसमें आपका उत्तर आ गया, जीव के तिर्यंच संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है, ये बात आ गई ना।
देखो तिर्यंच नाम क्यों लिखते हैं, कि उस पर्याय से परिणत जीव के तिर्यंच संज्ञा का व्यवहार पाया जाता है, यानी उनके साथ तिर्यंच ऐसा हम नाम देते हैं उनको, और उन जीव के तिर्यंच संज्ञा का ज्ञान पाया जाता है, ज्ञान और व्यवहार वैसा होता है उसके बारे में। अब आठवां सूत्र के, मनुष्य गदीये मनुष्यो नाम कदम भवदी, मनुष्य जीव मनुष्य गति में जीव मनुष्य कैसे होता है, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह चाहिए। यहाँ भी पहले के समान नए निक्षेपादि रूप से संदेह की उत्पत्ति का प्ररूपण करना चाहिए, यानी संदेह कैसे हो सकता है, तो सात नयों के द्वारा ऐसा अलग अलग उसके मनुष्य को किसको कहेंगे उसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, निक्षेप अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग निक्षेप से अलग अलग जीवों को मनुष्य कहेंगे, और फिर एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि कौन से भाव पाँच भावों में से उसके उत्पत्ति के कारण है, तो यहाँ भी ऐसा संदेह हो सकता है ऐसा कहकर बाद में वो संदेह को दूर करने के लिए कहेंगे एवं भूत नय से, या एवं भूत नय के विषय भूत औदयिक भाव से, और फिर कौन सा नो आगम भाव निक्षेप से, है ना, फिर औदयिक में कौन सा कर्म लेना, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव मनुष्य होता है। ये पूरा ले लेना उसमें। अब उसका उत्तर देते हैं, मनुष्य गति नामाए उदयेन। मनुष्य गति नाम प्रकृति के उदय से जीव मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय, उदय से उत्पन्न हुई पर्याय ने उदय तो निमित्त में रह गया, यहाँ तो निमित्त को ही कारण बताकर उसके कारण उत्पन्न हुए ऐसा कथन होगा, वो कर्णानियोग में कथन ऐसे ही होते हैं। उस पर्याय से उत्पन्न, उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत जीव, अभी हम कैसे हैं, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई ऐसी जो मनुष्य पर्याय है, उस पर्याय से परिणत जीव, उस जीव के मनुष्य संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है, उन्हीं जीव को मनुष्य ऐसा व्यवहार करते हैं और उन्हीं को मनुष्य ऐसा ज्ञान भी पाया जाता है। अब देवगति संबंधी बात करेंगे। देवगति ये देवो नाम कदम भवदी, देवगति में जीव देव कैसे होता है, तो यह सूत्र सुगम है। उसमें भी वो सारे वो इतने सात नए लगते हैं, चार निक्षेप लगते हैं, पांच भाव में कौन सा भाव है, ऐसे सारे प्रश्न उठाकर फिर उसका उत्तर देते हैं। देवगति नामाए उदयेन, देवगति नाम प्रकृति के उदय से जीव देव होता है, क्योंकि देवगति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई अणिमादिक पर्याय से परिणत जीव, अणिमादिक लिखा, अणिमा गरिमा लघिमा वगैरह जो उसके गुण है वहां के आठ ऐसे उनके महिमा के महिमा युक्त ऐसे कुछ है ना, उनके दिव्य गुण ऐसे कहलाते हैं। अणिमा ने क्या छोटा रूप ले जाए, फिर बड़ा हो जावे या हल्का हो जावे, भारी हो जावे, ये विक्रिया कर सकते हैं ना, पृथक पृथक आदि जो कुछ वहाँ पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं अणिमादिक पर्याय से परिणत जीव के देव संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है। इस तरह से चारों गति की बात की, तो विशिष्ट गति में जीव क्यों जाता है या क्यों है उसमें, कैसे होता है, तो उस गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जो पर्याय से परिणत जीव, उसको उस गति वाला कहा जाता है, उसको देव कहेंगे या नारकी कहेंगे, मनुष्य कहेंगे या तिर्यंच कहेंगे। नरक तिर्यंच कौमा देना तिर्यंच के बाद, मनुष्य और देव ये गतियां यदि केवल अपनी एक एक प्रकृति उदय में आती हो तो नरक गति के उदय से चाहिए। देखो ऊपर जो कुछ है, निरे तिरेक मनुष्य देवगति और यदि केवल आव उदयम आगच्छन्ति तो निरे गति उदयेन नेरयो। ये उदय से शब्द यहाँ रह गया है, मैं फिरती हूँ वो पैराग्राफ में दूसरी लाइन क्या कहना चाहते हैं। ये जो चार गति हमने देखी, उस गतियों में या वे गतियाँ यदि एकमात्र उस एक एक कर्म प्रकृति के उदय से होती हो तो नरक गति के उदय से नारकी, यानी नरक गति नाम कर्म के उदय से नारकी, तिर्यंच गति के उदय से तिर्यंच, मनुष्य गति के उदय से मनुष्य और देव गति के उदय से देव होता है, ऐसा कहना उचित है। किंतु क्या कहते हैं, क्या एकमात्र नरक गति नाम कर्म के उदय से ही जीव नारकी होता है क्या, क्या उसके साथ अन्य भी कुछ प्रकृतियों का उदय है, ऐसा प्रश्न है। किंतु अन्य प्रकृतियां भी वहां उदय में आती हैं, जिनके बिना नरक तिर्यंच मनुष्य और देवगति नाम कर्मों का उदय पाया नहीं जाता। क्या कहते हैं, अकेले एक नरक गति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है, उसके साथ अन्य भी प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। नाम कर्म की एक ही प्रकृति का उदय नहीं है, कॉम्बिनेशन होगा ना। अभी नरक के नारकियों की विशिष्ट प्रकृतियों का अभी सभी के सभी 93 का उदय नहीं होता है, ख्याल है ना। नाम कर्म के उदय का अलग ही सब कारोबार है, याद है कुछ? देखेंगे अभी इसमें, देखो तो अन्य नाम कर्मों का भी उदय पाया जाएगा। जैसे नरक गति नाम कर्म का उदय है, तो उस जीव को कौन कौन से कर्मों का उदय होगा उसकी बात बताएंगे। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय वालों को और कौन कौन सा उसका पैकेज बताएंगे ना, कितना कितना है। जैसे हमने बंध में भी देखा था कितनी प्रकृतियां बनती है किस जीव को। जैसे जो एकेंद्रिय का बंध कर रहा है अपर्याप्तों का, वो 23 वाला बंध करता था। ऐसा अपने यहाँ हुआ था ना बंध के स्थान, देखे हमने उदय के स्थान नहीं हुए ना, यहाँ उदय के हुए है, बंध के स्थान देखे, उदय के स्थान धवला में नहीं देखे। हाँ सम्यक ज्ञान चंद्री, हाँ कल द्वितीय का उत्तरार्ध देखो, कर्मकांड भाग दूसरा उसका उत्तरार्ध। ये खाली कवर का कलर पर मत जाना, ऐसा उत्तरार्ध लिखा हुआ होगा, द्वितीय खंड उत्तरार्ध उसको ले आना कल, द्वितीय खंड का उत्तरार्ध, उसमें से कुछ बातें पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट शुरुआत कर दी उन्होंने, इतने इतने का होता है और उसमें इतने इतने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होते हैं। ये ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, क्या कहा, ये कुछ है नहीं है। मैंने 2-4 पेजेस पढ़ने की कोशिश की कल, तो उसमें से पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से अच्छी तरह से यानी अपने ख्याल में भी आ जाएगा। देखो क्या कहते हैं, यहाँ क्या बताना चाहते हैं, नाम कर्म का उदय किसी एक ही प्रकृति का नहीं होता, यानी नाम कर्म के उदय विशिष्ट ग्रुप ऑफ प्रकृतियों का उदय होगा, उसको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो अभी हम नाम कर्म की बात अलग रखते हैं, मोहनी की बात करेंगे हम। मोहनी के बंध योग्य उसकी तो हमने अलग अलग देखी थी कि मिथ्यात्व अवस्था में कितना बंध होता है, 22 का बंध होता है वगैरह वगैरह। उदय कितना होता है ऐसा अगर हम देंगे तो उसमें है ना 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, और वो भी अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो एक टाइम में बंध भले 4×16 का हो, उदय तो 4 का होगा। क्रोध का उदय हो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, फिर प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध, सबका उदय एक साथ होता है। तो उदय ये 4 प्रकृति का उदय है, 3 वेद में से 1 वेद का उदय है, 5 हो गए है ना। हास्य रति या शोक जुगुप्स सॉरी या शोक अरति, तो ये 2 हो गए, 5, 2, 7 हो गए। और भय जुगुप्सा ऑप्शनल है, एक मिथ्या तो भी रह गया, पहले हमने गिनाया नहीं था। हाँ मिथ्या तो को लेगे तो 8 हो जाएंगे। अब किसी के भय जुगुप्सा दोनों को उदय रहता है, दोनों का, किसी को अकेले भय का उदय है, किसी को अकेले जुगुप्सा की उदय है, और किसी को दोनों का भी नहीं है। बंध वाले दोनों का होता रहता है, निरंतर बंधने वाली है, ऐसा ये उदय स्थान कहलाता है। मुझे तो उदय स्थान किसको कहना वो बात बताए। तो ये तो गुणस्थान के अनुसार, मोहनी का तो उदय स्थान विशिष्ट गुणस्थान के अनुसार चलेगा। अभी हम ज्ञानावरणी की बात करते हैं, ज्ञानावरणी का उदय तो चलता रहता है ना, अभी उसमें क्षोभशम है उसको भी उदय रूप ऐसा ले लेना। परंतु यहाँ ये नाम कर्म में स्पेशलिटी है, नाम कर्म का उदय गुणस्थान के अनुसार नहीं चलता। नाम कर्म का उदय विशिष्ट, जो जीव कहीं से मरकर आता है, पहले विग्रह गति में है, फिर उसकी 6 पर्याप्ति होती है, तो शरीर पर्याप्ति तक का काल, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर अगली कौन सी पर्याप्ति है, इंद्रिय पर्याप्ति ने, फिर उश्वास पर्याप्ति तक का काल लेना, फिर उश्वास पर्याप्ति पूरी होने पर भाषा पर्याप्ति का काल, और भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर लाइफ टाइम तक का काल। ऐसे उसमें 5 काल अलग अलग बताए। पहला है विग्रह गति काल, फिर मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उच्छ्वास पर्याप्ति काल, और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर भाषा पर्याप्ति काल। ये नाम कर्म के उदय इन पांच कालों के अनुसार अलग अलग कर्मों का उदय चालू हो जाता है, बराबर है ना? प्रेरणा बिन कुछ गिन रहे तो उसके अनुसार हम कहेंगे नाम कर्म का उदय। अभी उसकी अपेक्षा देखो यहाँ पांच बातें बताई, इसको हम कल और विस्तार से लेने वाले हैं, पुस्तक में से भी ले लेंगे वो कर्मकांड में से। यहाँ क्या लिखा है, नारकी जीवों के पांच उदय स्थान है। ये उदय स्थान केवल नाम कर्म की अपेक्षा से ही बताए हैं, क्योंकि उनके मोनि के कितने उदय स्थान है वो गुण स्थान के अनुसार बदलेंगे। ख्याल आता है? जैसे मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व का उदय है, और जो सम्यक दृष्टि नारकी है उसको मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, वो प्रत्याख्यानावरण का है, उसको अन्य वेद का उदय नहीं है, एक नरक नारकी के वेद का उदय, ऐसे अलग अलग होगा। उसकी बात यहाँ है ही नहीं, यहाँ केवल नाम कर्म के उदय की बात चल रही है। यहाँ लिखा नहीं है परंतु हमें समझना है, क्योंकि पहले उन्होंने बताया नरक गति नाम कर्म अकेली नहीं होती, तो उसका ग्रुप होगा, तो ये नाम कर्म के ग्रुप की ही बात चल रही है। तो यहाँ क्या लिखा है, नारकी जीवों के पांच उदय स्थान है, 21, 25, 27, 28 और 29 प्रकृतियों संबंधी। ये अंकों में भी लिखा है 21, 25, 27, 28, 29। तो उसको क्या कहेंगे, ये 21 वाला कहाँ होगा, विग्रह गति में। कोई मनुष्य और तिर्यंच मरकर नरक में जा रहा तो विग्रह गति में उसको 21 वाला स्थान होगा। 25 वाला कब होगा, नरक में जाते ही पहली आहार पर्याप्ति और दूसरी शरीर पर्याप्ति है, एक एक पर्याप्ति पूरी होने के लिए एक एक अंतर्मुहूर्त लगता है, तो वहाँ का पहले समय से लेकर आहार पर्याप्ति पूरी हुई और शरीर पर्याप्ति पूरी होने का अंतिम समय भी पूरी नहीं हुई है, पूरी होते ही उसको वो 25 ये 27 वाला स्थान शुरू होगा। यानी ये 25 का स्थान कहाँ तक है, विग्रह गति समाप्त हुई शरीर धारण का करने का पहले समय से लेकर अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक का काल लेना, वो 25 वाला है। वो कौन सी प्रकृति है वो बताएंगे। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर 27 वाला स्थान होगा, यानी कुछ दो प्रकृतियों का उदय वहां शुरू हो जाएगा, ये शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद। फिर उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होती है तो उच्छ्वास भी शुरू हो जाता है, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय, तो ये 28 वाला स्थान होगा। भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर, अभी नारकी की बात है तो दूसर नाम कर्म का उदय भी शुरू हो जाएगा, वो 29 वाला स्थान है। अब ये 29 वाला स्थान है, भाषा पर्याप्ति शुरू होने पर 29 का उदय शुरू हुआ, ये नारकी के अंत तक, लाइफ के अंत तक ये चलेगा, 29 वाला उदय वहाँ चलेगा नाम कर्मों का। अलग अलग गतियों में वो मार्गणा की अपेक्षा ये अलग अलग बातें होगी। तो यहाँ नाम कर्म के उदय में ये जो अलग अलग काल है, काल की अपेक्षा नाम कर्मों के उदय अलग अलग, पहले जो 21 है ना उसमें और एडिशन होती जाएगी। जैसे नरक गति को जा रहा है जो विग्रह गति में, उसको 21 का उदय है, उस 21 में एक प्रकृति है नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी जिसको कहते हैं, उसका उदय तो मात्र विग्रह गति में होता है, वो मिटेगा और अन्य किसी प्रकृतियों का उदय शुरू हो जाएगा। बाद में और किसी प्रकृति का उदय शुरू हो गया, फिर और किसी का हो जाएगा, बाद में मिटता नहीं, ये केवल अनुपूर्वी जो है वो विग्रह गति में है, उसका उदय बाद में नहीं है। यानी वो 21 में से एक चला जाएगा, 20 रह जाएगा, और पांच प्रकृति अन्य कोई और उसका उदय होगा, फिर और दो प्रकृति का उदय होगा, और एक प्रकृति का होगा, और एक का होगा, वो कौन सी प्रकृति है वो अभी बताएंगे। देखो वह इस प्रकार है, नरक गति पंचेंद्रिय जाति, उन्होंने नंबर डाले इसमें, तेजस और कारमान शरीर, यानी तेजस शरीर नाम कर्म ऐसा समझना, तेजस कारमान ऐसा भी हम कह सकते उसको, वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु त्रस बादर पर्याप्त स्थिर और अस्थिर शुभ और अशुभ दुर्भग अनादेय अयशस कीर्ति और निर्माण प्रकृतियों को लेकर 21 प्रकृतियों संबंधी पहला उदय स्थान होता है। देखो उसमें 21 है ना, ये विग्रह गति वाला, तो ये नरक गति प्राय ज्ञान पूर्वी तो विग्रह गति में ही होगा, बाकी का उदय तो आगे भी चलता रहेगा। तो विग्रह गति में इसमें से जो कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं कि उनका उदय तो हमेशा ही रहता है, कोई भी काल क्यों ना हो, विग्रह गति में हो या मिश्र अवस्था में हो, शरीर पर्याप्ति हो, उश्वास पर्याप्ति हो, भाषा पर्याप्ति कोई भी हो, तो उसको कहते ध्रुवो उदय। ध्रुव जिनका उदय है, जिनका उदय निरंतर चलता रहता है, उसको कहते ध्रुवोदय। यानी बेसिक तो वो तो होगी ही होगी, तो ये ध्रुवोदय होती है 12 और 9 21। और कौन कौन सी होती है, तो देखो ये जो अभी हमने देखी, देखो गति और जाति तो अलग अलग होगी है ना, तेजस कारमान तो सब जीवों को है, तो ये नित्य उदय ध्रुवोदय है, तेजस कारमान ये दोगे। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 4 2 6 हो गए। अगुरु लघु का उदय भी हमेशा बनना रहता है, ये 7 हुआ। अब जो है ना स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, 7 4 11 हुए, और निर्माण लेना, ये 12 प्रकृति है, वो ध्रुवोदयी प्रकृति है। हाँ हाँ, विग्रह गति में भी रहेगा। देखो कल हम पुस्तक में से भी पढ़ेंगे, सबके पास पुस्तक होगी, उसमें से हम पढ़ेंगे कल। क्या कहते हैं, काय योग की बात नहीं है, शरीर नाम कर्म के उदय की बात है। हाँ, क्योंकि तेजस नाम का काय योग नहीं होता है ना। हाँ, आपको देखना है कि 104 पृष्ठ है, कल इसको फिर हम पुस्तक में से देखने वाले हो। देखो 102 पेज पर पहले मैं पढ़ लेती हूँ कुछ। ये नाम कर्म के उदय स्थान, जिस जिस काल विषय उदय योग्य है तहा ही हुई। हमने मोहिनी के उदय स्थान गुणस्थान के अनुसार बदलते हुए देखे थे, अब नाम कर्म के जो उदय स्थान है वे काल के अनुसार बदलते हैं। एक ही नारकी जीव के विग्रह गति में, फिर वो मिश्र अवस्था में, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर, उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर, भाषा पर्याप्ति ऊपर, ये काल कहलाते हैं। तातई नियत काल है, इसको नाम कर्म के उदय के जो काल है वो नियत निश्चित काल है, उन कालों में उन उन प्रकृतियों का उदय होगा। ते काल, अभी ये कौन कौन से है, विग्रह गति व कारमान शरीर विषय, जहाँ कारमान शरीर ही है, या विग्रह गति कहो यानी मोड़ के पहले वाला, जो एक समय वाला जो है रुजु गति से जाता है, उसके क्या होता है, उसको वो मोड़ के पहले वाले ने कारमान का योग नहीं रहता, तो उसको ये 21 वाला स्थान नहीं होगा, ख्याल है, उसको वो नरक गति प्रायोगपुरी वगैरह, हाँ वो नहीं होगा, डायरेक्ट उसके ये जो प्रकृतियां है वो आगे वाला जो 25 वाला, वो 25 का ही स्थान उसको शुरू हो जाएगा। तो विग्रह गति व कारमान शरीर में, वो एक पहला काल हुआ। दूसरा मिश्र शरीर विषय, मिश्र किसको कहना है, ये हमने पहले भी देखा था योग में, औदारिक मिश्र या वैकरिक मिश्र कब तक होता है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले, यानी पहली 2 पर्याप्तियों का जब पूर्णता चल रही है तब, वो मिश्र शरीर काल कहलाता है। हाँ, दोनों पहली आहार पर्याप्ति है, दूसरी शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती, पूर्ण होने पर उसको शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। ये नाम कर्म के उदय कालों के नाम है। पहला कौन सा, विग्रह गति काल कहो या कारमान शरीर काल। दूसरा जो काल है उसका नाम क्या है, मिश्र शरीर काल, मिश्र कहो या मिश्र शरीर काल। तीसरे काल का नाम है शरीर पर्याप्ति। चौथे का नाम है आन पान या उच्छ्वास पर्याप्ति। आन पान है ने श्वासोच्छ्वास, तो आन पान पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। ये मन पर्याप्ति वाला कोई अलग नहीं है, क्योंकि वहां कोई नाम कर्म का अलग उदय शुरू नहीं होता है। इसलिए ये पांच जो काल है वो नाम कर्म के उदय की अपेक्षा ये पांच काल बताए। देखो उसी को फिर दोहराते, कारमान शरीर जहां पाइए सो कारमान काल, यावत शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होई तावत शरीर मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति जब तक, यावत यानी जब तक पूरी नहीं होती तब तो शरीर मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति पूर्ण भये, पूर्ण होने पर श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण जब तक नहीं होती तब तक शरीर पर्याप्ति काल। शरीर पर्याप्ति तो पूरी हो गई है और उच्छ्वास पर्याप्ति शुरू तो हुई है पर पूर्णता को नहीं पहुंची है, उतना काल उसको शरीर पर्याप्ति, जो पूर्ण हुई उसके नाम से कहना तो शरीर पर्याप्ति काल कहेंगे। श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी हो गई जी, अभी भाषा पर्याप्ति पूर्णता की ओर चल रही है ना, वो काल को हम क्या कहेंगे, श्वासोश्वास पर्याप्ति काल कहेंगे, उसको आन पान पर्याप्ति काल कहते हैं। और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर पूर्ण भये पीछे सर्व अवशेष आयु प्रमाण मरण तक का जो काल है उसको भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। भाषा पर्याप्ति काल ये किस अपेक्षा से ये नाम दिए है, नाम कर्म के उदय की अपेक्षा ये नाम दिए है। नाम कर्म के जो उदय काल है अलग अलग उसके लिए भाषा पर्याप्ति काल कह दिया जाता है। तो अभी नारकी जीवों में कितने काल देखे हमने, विग्रह गति काल, मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल, भाषा पर्याप्ति काल, बरोबर। अब हम एकेंद्रियों में गिनेंगे, बोलो भाई विग्रह गति होगी कि नहीं होगी, होगी। विग्रह गति काल, फिर मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल। लब्धि की बात नहीं मैंने उठाई, मैंने एकेंद्रीय का रखा। एकेंद्रीय में उच्छ्वास है, भाषा नहीं है, तो उनके चार ही काल हो गए। अब जो लब्धिया पर्याप्त जीव है उसमें ना भाषा होती है ना उच्छ्वास होता है ना, तो उनके शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती है, है? तो उनके कौन सा होगा, पहला विग्रह गति काल और मिश्र शरीर काल, दो ही काल हो गए उनके और उसी में मरण होगा उनका। वो पुस्तक सामने होगा तो और समझेगा, ये तो हम आगे बढ़ेंगे ना तिरंच में, ये सारे हम अलग अलग एक इंद्रिय पर द्विंद्रिय पर घटाएंगे, कौन कौन सी प्रकृति का कहाँ उदय शुरू, बिल्कुल आप स्वयं ही उत्तर दोगे, मैं नहीं बताऊंगी, ये नहीं इतना आसान हो जाएगा। पहली बार सुनते तो हमें भी ऐसा कंफ्यूजन लगता है ना, क्या यहाँ तो एकदम सी बात उठाई है उन्होंने और डायरेक्ट इसके भंग है ना उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बता रहे, हम उसमें उसके आधार से जाएंगे कर्मकांड के तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये कारमान वाला जो काल है वो और किसको होगा विग्रह गति के अलावा, समुद्घात वाले, केवली समुद्घात, हाँ तो वहां भी 21 प्रकृति का उदय होगा ना, होगा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, हाँ उच्छ्वास होता है वहाँ, ये अनुपूर्वी वाला नहीं होगा, उसके अलावा बाकी होते हैं, वो बात आएगी अभी। तभी हम ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां देख रहे थे, 12 प्रकृतियां तो ध्रुवोदयी है, 104 नंबर के पृष्ठ पर है। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका पृष्ठ 104 द्वितीय खंड, नहीं उसमें नहीं कुछ लिखा है। ये हम अगर ध्रुवोदयी की अपेक्षा बताएंगे ना तो ये नाम कर्म याद हो जाएंगे, रटने की बात नहीं है। वो क्यों ऐसे इतने सारे नाम है, हम 21 नाम याद रखना तो कोई आसान बात नहीं है। और वो क्यों ऐसे लिखा है, कौन सी प्रकृति फिर शरीर पर्याप्ति शुरू होती है तो कौन सी प्रकृति का उदय होगा, बाद में कौन सी होगा, उसके बाद कौन से होगा, समझकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखो ये ध्रुवोदय यानी हमेशा ही जिनका उदय पाया जाता है, भले वो किसी भी काल में क्यों ना हो, उसको कहेंगे ध्रुवोदयी प्रकृतियां। जब तक उदय की विच्छित्ति हो जाएगी जहां कहां, जैसे तेजस कारमान शरीर नाम कर्म है, अभी 13वें गुणस्थान के अंत तक उसका उदय है, इसके लिए इसको ध्रुवोदयी प्रकृतियां कहेंगे। वे कौन कौन सी है देखो, ये 12 ध्रुवोदयी है, उसमें अभी हमने उसमें से गिनाई थी, फिर दोबारा तेजस कारमान वर्णादि 4 वर्ण गंध रस स्पर्श 6 हो गए। ये स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, ये तो चारों को ही लेना, अगुरु लघु और निर्माण, इनका उदय तो निरंतर रहता है, ये 12 को हम ध्रुवोदयी कहेंगे, यानी इनका निरंतर उदय पाया जाता है। अब अन्य का भी उदय तो होता है परंतु उसमें ऑप्शनल प्रकृतियां हैं, जैसे 4 गति में कोई एक गति का उदय, जैसे विग्रह गति में भी गति नाम कर्म का उदय और पूरे लाइफ टाइम में भी गति नाम कर्म का उदय तो पाया ही जाता है। पहले तो कोई भी गति क्यों ना हो, जो तेजस है, कारमान है, वर्णादि 4 है, अगुरु लघु है, निर्माण है, ये जो बातें हैं और स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, इनका तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गति क्यों ना हो, इनका उदय तो होता ही है। अब ये 12 प्लस हमको 9 देखना है विग्रह गति के, तो उसमें 4 गति में से कोई एक गति नाम कर्म, तो इसलिए इन 9 को अलग रखा कि कोई एक गति नाम कर्म, कोई एक जाति नाम कर्म। अब ये नारकी मनुष्य देवों के लिए पंचेंद्रिय जाति होगी, परंतु तिर्यंच में वेरिएशन होगी, कोई एकेंद्रीय जाति, कोई द्विंद्रीय जाति, कोई पंचेंद्रीय जाति आदि, तो एक गति एक जाति, 4 गति में एक, 5 जाति में एक। अब ये त्रस बादर पर्याप्त आदि जो है ना प्रकृतियां, तो त्रस या स्थावर कोई एक होगा, फिर बादर या सूक्ष्म होगा, पर्याप्त या अपर्याप्त होगा, परंतु हम हमेशा त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक ऐसा याद करते ना, प्रत्येक या साधारण का उदय यहाँ पर नहीं है, औदारिक आदि शरीर नाम कर्म का उदय भी यहाँ नहीं है। शरीर नाम कर्म का उदय होते ही शरीर के परमाणु ग्रहण करना शुरू होता है, वो कार्य वो मिश्र शरीर अवस्था में होगा, इसलिए यहाँ त्रस बादर पर्याप्त या उसके उल्टा जो कुछ है, स्थावर सूक्ष्म वगैरह जो कुछ है, अपर्याप्त जोड़ी जोड़ी में से एक एक है ना, जोड़ी जोड़ी में से एक एक है, ऑप्शनल है ये प्रकृति। पहले 12 तो फिक्स है, अब ये 9 में से 4 गति में से एक, 5 जाति में से एक, फिर त्रस बादर और पर्याप्त, ऑप्शनल जो कुछ होगा, वो जो कोई कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि स्थावर में कोई बादर भी होगा, कोई सूक्ष्म भी होगा, कोई पर्याप्त भी होगा, कोई अपर्याप्त भी होगा, जो जैसा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होगा उससे। तो ये 5 हो गई ना, अभी कौन कौन सी लिए, गति, जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, या उसकी जो कोई ऑप्शनल है वो लेना, समझना, मैं तो एक एक को ही गिना रही हूँ। फिर सुभग दुर्भग आदेय अनादेय और यशस कीर्ति अशस्य, उसमें से कोई एक, ये हो गए, और अनुपूर्वी में से एक। देखो हमेशा कोई ना कोई गति नाम कर्म का उदय है, जाति नाम कर्म का उदय है, बराबर, हाँ, त्रस वादर पर्याप्त या उसके जो कोई अल्टरनेट होगी वो यथा योग्य समझना। सुभग दुर्भग में से एक, आदे अनादे में से एक, यशस कीर्ति यशस कीर्ति में से एक, और यहाँ विग्रह गति में अनुपूर्वी का चार अनुपूर्वी है, प्रायोग्य अनुपूर्वी उसमें से एक। पहले 12 देखी, अब ये 9 है, 21 का उदय होगा विग्रह गति में। अभी याद नहीं होगा परंतु बाद में जो हम भंग वगैरह पढ़ेंगे बार बार इसको दोहराएंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि कौन सी प्रकृतियां। यानी जो रुजुगति से जाते हैं जीव, रुजुगति यानी एक ही समय में पहुंचने वाले बिना मोड़ के, उनके ये 21 का उदय का स्थान नहीं होता, भले वो किसी भी गति का जीव क्यों ना हो। जो रुजुगति से जाता है उसको ये 21 वाला स्थान नहीं होता नाम कर्म का। हाँ, डायरेक्ट वो कोई जो 24 या 25 जो कुछ है यथा योग्य है, हम नारकी की बात करते हैं तो डायरेक्ट 25 का स्थान होगा, क्योंकि ये जो 25 वाला स्थान यहाँ बता रहे हैं शरीर मिश्र शरीर वाला, वो एकेंद्रियों में पंचेंद्रियों में भी देव में अलग है, देव नारकियों के लिए और मनुष्य तिरियंचों के लिए अलग है। जैसे एकेंद्रियों में 24 का होगा, देवनारकी के लिए 25 का होगा, मनुष्य तिरंज के लिए 26 का होगा, वो कौन से होगा क्यों होगा उसकी बात बाद में। यहाँ अपना एक ही चल रहा है, विग्रह गति का 21 वाला स्थान होता है। देखो आपका प्रश्न है रुजुगति से जाने वाले जीव के प्रायोज्ञानुपूर्वी का बंध नहीं होता, यहाँ बंध की बात नहीं है, उदय की बात चल रही है। प्रायोज्ञानुपूर्वी का बंध तो हर समय होता है, गति नाम कर्म और गति के साथ गति प्रायोज्ञानुपूर्वी का बंध हर समय चल रहा है, परंतु उसके उदय में एक रूल है, उसको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। एकमात्र मोड़ वाले गति सहित जो विग्रह गति में जाता है वहीं पर प्रायोज्ञानुपूर्वी का उदय होता है, अन्यथा प्रायोज्ञानुपूर्वी का उदय अदरवाइज होता ही नहीं, उसका उतना ही कार्य वहीं पर उदय होता है, बंध भले होता रहे हमेशा। ख्याल है? देखो अभी हम यहाँ पर आए 32 पृष्ठ पर ही नीचे, अभी हमने ये तो पूरी टोटल देखी थी ना, 33 पृष्ठ पर आए। माइक बहुत स्लो है। यहाँ भंग एक ही हुआ, एक ही हुआ है नहीं, इसमें कोई कॉम्बिनेशंस नहीं। अभी देखो अभी अभी जो हमने 12 और 9 देखे ना, अभी दोबारा पढ़ेंगे इसको, और वो एक ही भंग क्यों हुआ उसकी भी बात आपको ख्याल में आ जाएगी। देखो फिर से, नरक गति पंचेंद्रिय जाति, तेजस कर्मण शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, इसमें तो कोई वेरिएशन हो नहीं सकता है ना। अग्रु लघु त्रस बादर पर्याप्त, सभी नारकी त्रस होते हैं, सभी बादर है और सभी पर्याप्त वाले, स्थिर अस्थिर भी सबको है, शुभ अशुभ भी सबको है। अब नारकी है इसलिए दुर्भग ही है, अनादेय ही है प्रकृति उनकी, और अयशस कीर्ति ही है। अब एकेंद्रियादि में या मनुष्यों में वगैरह आगे चलकर हम देखेंगे यहाँ फेर हो सकता है, कोई को सुभग होगा या दुर्भग होगा, आदेय होगा या अनादेय होगा, यशस कीर्ति होगा या अयशस कीर्ति होगा, तो उसमें भंग कहेंगे। दो हो सकते ना पॉसिबिलिटी, परम्यूटेशंस दो के होंगे, तो दो दुर्भग ये सुभग दुर्भग वाले, दो अनादेय आदेय वाले, दो यशस कीर्ति यशस कीर्ति, 2×2×2, तो वहाँ 8 भंग करेंगे हम। यह नारकी है तो उनके ये अप्रशस्त प्रकृति का ही उदय होगा नाम कर्मों का, दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति, तो उसमें भंग यानी अदर कोई परमिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं होगी, यही एक कॉम्बिनेशन वाला उनका है पैकेज। ये अप्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय है उनके। एकेंद्रियों में भी यशस कीर्ति अयशस कीर्ति दो हो गए, किसी एकेंद्रियों को यशस कीर्ति का भी उदय होगा तो वहां वो भंग दो करेंगे हम, जो कुछ है जब आएगा तब देखेंगे। इसलिए कहा ना एक ही भंग है, यानी इन्हीं प्रकृतियों का उदय होगा, अन्य कोई पुण्य प्रकृति का वगैरह यहाँ उदय उनके नहीं है। देखो निर्माण तो सबके होता ही है, ये तो ध्रुवोदयी प्रकृति है। इन प्रकृतियों को लेकर 21 प्रकृतियों संबंधी पहला उदय स्थान होता है। पहला उदय स्थान क्योंकि वो काल की अपेक्षा है, विग्रह गति वाला उसका पहला उदय स्थान है। नारकियों की बात चल रही है। यहाँ भंग एक ही हुआ, यानी ये विग्रह गति संबंधी एक भंग हुआ उदय काल का। शंका, यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है? पहले तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, खाली 21, 25, 27, 28, 29 इतना ही कहा था। ये तो हमने अभी कर्मकांड के आधार से ये पांच काल बता दिए। तो अब यहाँ प्रश्नकार पूछता है, ये 21 वाला स्थान किसको है, कौन से नारकियों को है? तो कहते हैं, विग्रह गति में विद्यमान नारकी जीव के यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। फिर शंका, यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? क्या आप कह सकते हो? मैक्सिमम 2 समय। कितने मोड़ से जाने वाले? 3 मोड़ से जाएगा कोई? देखो देखो, समाधान, यह उदय स्थान कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 2 समय तक रहता है। 2 समय ने 2 मोड़। देखो, नरक में जाने वाले कहाँ से जाते हैं? मनुष्य और तिरंच में से, पंचेंद्रिय तिरंच और मनुष्यों की बात है। 3 मोड़ कब लेने पड़ते हैं? हमने देखा था वो लोकाकाश के नीचे के एंड में हो तो उसको पहले में आने, नीचे सेंटर में आना पड़ेगा, बाहर से अलोकाकाश में जा नहीं सकता है ना, इसलिए वहाँ 3 मोड़ की बात की थी। बाकी कोई चौरस ऐसी वस्तु है तो कहीं पर भी जाना है तो 2 मोड़ में जा सकता है अधिक से अधिक। सीधे जाने वाला तो स्ट्रेट ही जाएगा। अभी ऐसी पोजीशन है, एक सतह पर जाना है तो कहीं भी जाना है तो एक मोड़ से जाना। अभी ऐसी चौरस कोई चीज़ है तो फिर पहले ऊपर जाना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ, तो 2 मोड़ से कहीं भी जा सकता है। तो कोई भी मनुष्य और तिरंच नरक में जाने वाला 2 मोड़ से अधिक तीसरा मोड़ लेने की उसको जरूरत नहीं है। सभी जीवों की अपेक्षा हमने देखा था कि 4 समय वाली विग्रह गति होती है और उसमें 3 मोड़ होते हैं, है ना? यह कारमान का योग मोड़ के पहले ही होता है, मोड़ के बाद नहीं होता। इसलिए ये उदय स्थान कब होगा? जहां कारमान का योग है। एक मोड़ से जाने वाले जीव 2 समय विग्रह गति है, परंतु यहाँ उदय काल कितने होगा एक मोड़ वाले को? देखो, मोड़ यानी टर्न लेके जाता है वो। कोई जीव यहाँ से मरता है और उसको यहाँ जन्म लेना है, या हम ऊपर से नीचे दिखाएंगे? अच्छा, लोकाकाश दिखाएंगे पहले। लोकाकाश में अभी यहाँ का नारकी जीव होना वाला है कोई जीव, और यहाँ का मनुष्य है वो या तो रुजु गति से आएगा तो उसको उसी समय में यहाँ उसके वो 25 वाला स्थान शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा तो, बराबर, यानी वो बिना मोड़ वाला है। अभी जो ये बाजू में है कोई तिरंच है, पहले सेंटर में आएगा और फिर नीचे चला जाएगा, एक मोड़ से जाएगा। विग्रह गति का समय 2 समय कहेंगे हम, परंतु यहाँ ये जो नाम कर्म के उदय स्थान जो है, यहाँ पर जो ये दूसरा समय है उसमें तो वो शरीर पर्याप्ति, उसकी ये आहार पर्याप्ति आदि शुरू हो जाएगी, मिश्र काल शुरू हो जाता है, उसको नहीं पकड़ना है एक समय के लिए। और या उसको और अंदर कहीं जाना है यहाँ पर तो 2 मोड़ में वो पहुँच ही जाएगा, तो 2 समय के लिए उसके ये विग्रह गति काल किस अपेक्षा? नाम कर्म के उदय की अपेक्षा, 21 का उदय स्थान की अपेक्षा, या एक समय या 2 समय। ये जो हमने 3 मोड़ की बात की थी, 3 मोड़ किस जीव को? अभी कोई यहाँ का जो कोई एकेंद्रीय जीव है लोकाकाश के नीचे एकदम बाहर वाला 7 राज्यों के अंत में, तो बाहर से तो नहीं जाता है वो ऊपर, अगर समझो यहाँ वात वाले में जन्म लेना है अलोकाकाश में तो जाएगा नहीं, है ना? तो पहले भीतर आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और अंदर डेप्थ में होगा तो और एक टर्न लेना पड़ेगा, तो उसके लिए 3 मोड़ की जरूरत है। ये तो यहाँ तो दो मोड में ही चला जाएगा कहीं भी। देखो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक दो समय तक रहता है। किसकी बात चल रही है? 21 वाले स्थान की बात चल रही है। उन नारकियों का यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है, ये अभी आगे 25 का बता रहे। उस स्थान में यही प्रकृतियां हैं, यही है नहीं, यही के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, यही है नहीं, वे ही, यही चाहिए, यही नहीं, बिंदी भी नहीं चाहिए और ये ही ऊपर जो बताई है वे ही प्रकृतियां है, एक्सेप्ट कहेंगे उसमें वो नरक गति प्रायोगेन पूर्वी नहीं होगी और एडिशनल कुछ प्रकृतियों का उदय शुरू होगा यहाँ पर। अब आहार पर्याप्ति शुरू हो गई है ना, यानी शरीर के परमाणु का ग्रहण चल रहा है, तो वहां वैकिरेक शरीर नाम कर्म का उदय भी शुरू हो जाएगा, प्रत्येक शरीर नाम कर्म का भी उदय चालू हो जाएगा। ऐसी ऐसी जो कोई वो आएगी अभी लिस्ट उसकी, तो उस स्थान में ये ही प्रकृतियां हैं। इतनी विशेषता है कि यानी वो 21 को तो लेना, उसमें से एक प्रायज्ञान पूर्वी को छोड़ना, 25 का स्थान है, 21 में से एक कम कर दी, कितनी रही? 20, उसमें पांच प्रकृतियां और मिलाना पड़ेगा, वो अभी बताएंगे। पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से नरक गति अनुपूर्वी को छोड़कर, अब यहाँ तो तीन ही प्रकृतियां बताई है, दो प्रकृतियां रह गई बताना। देखो यहाँ कौन कौन सी बताई है? वैकिरिक शरीर, अंगोपांग, उपघात और प्रत्येक शरीर। ऊपर देखो प्राकृत में देखो, नवरी अनुपूर्विम अवणे दूण, नीचे से दूसरी लाइन देखो, वेयुवीय शरीर यानी वैकिरेक शरीर नाम कर्म, हुंड संठान, वेयुवीय शरीर, अंगोवंग, उवघाद और पत्ते शरीर। देखो नीचे यानी इसमें दो मिलाना है और, अभी हमने पढ़ा ना नरक गति अनुपूर्वी को छोड़कर, अब यहाँ दो नाम डालो। वैकिरेक शरीर अंगोपांग लिखा है, उसके पहले एक तो वैकिरेक शरीर और दूसरा हुंडक संस्थान। नारकियों को तो एकमात्र हुंडक संस्थान ही होता है, छह संस्थानों में से यही एक संस्थान होता है। और छह सहनन में से कौन सा सहनन होता है? नारकियों को सहनन नहीं होता है, बहुत अच्छा। देखो अभी हमने जो 21 गिनाई थी उसमें से एक बाद की और ये पांच मिलाई, इन पांच प्रकृतियों को मिला देने से 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। अब इसकी अधिक चर्चा हम कल करेंगे, ये फिर से दोहराएंगे 25 कौन से हैं, कल पुस्तक के आधार से भी, वो कर्मकांड के आधार से भी आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान